पुण्यवादी पश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री राधा गोविंद धाम श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कान अहमदाबाद में रामनामी और भगवान राधा गोविंद के पाठ उत्सव के उपलक्ष्य में आप सब पधारे हैं। प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के पांचवें अध्याय जिसका नाम है दक्ष प्रजापति के द्वारा नारद को शराप। सो कथा चलती आ रही है, जो दक्ष प्रजापति भगवान शंकर का अपमान करने के कारण बकरे का सिर प्राप्त हो गया तो लज्जित हुआ और फिर अग्रमर्षण स्थान पे विंध्याचल पर्वत में घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और फिर दोबारा वो 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लिया और तब ये दक्ष प्रजा की उत्पत्ति करने लगा ब्रह्मा जी की भगवान की प्रेरणा से। तो इन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए, उनका नाम हरियाशव और कहा पुत्रों आप तपस्या करो और फिर प्रजा उत्पन्न करो। तो ये सारे भाई पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पश्चिम दिशा में हिंद महासागर के तट पे एक पावन सरोवर है जिसका नाम है नारायण सरोवर, वहां गए। सो नारायण सरोवर में इनको नारद जी ने आकर कुछ रहस्यमय बातें बताई। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है कि 10 ऐसी बातें बताई नारद जी ने जो रूपक था, एलोगोरी अंग्रेजी में कहते हैं, एक रहस्यमय बात बताई और उसका अर्थ नहीं बताया और चले गए। ये तपस्या से पवित्र हुए, तपोपूतम, तपस्या आदमी को पवित्र करती है, व्यक्ति पवित्र होता है तपस्या से। ये जो तपस्या से पवित्र हुए थे ये स्वयं उन नारद जी के बताए हुए रहस्यों की खोज करने लगे। तो पहला रहस्य था जो हमने परसों चिंतन किया था, ये धरती है जिसका किसी ने अंत मिला देखा ही नहीं है। भाई धरती कहाँ खत्म होती है कोई पता नहीं। उनका हरियाशव ने अर्थ निकाला कि ये शरीर वो क्षेत्र है, वो भूमि है जिसमें अनादि काल से बीज बोता हुआ जीव आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में चल रहा है। दूसरा नारद जी ने बताया था एक ही पुरुष है, वो कल श्लोक में आपने सुना होगा, एक पुरुष भगवान भोगता है, पुरुष का अर्थ होता है भोगता, एक भगवान ही भोगता है, बाकी सब उसके भोग्य हैं। भगवान पुरुष है, बाकी सब शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। तो एक भोक्ता केवल भगवान है, भोक्ता आरम यज्ञ तपसाम। आज 13वां श्लोक 6, 5, 13 पढ़ेंगे जिसमें तीसरी बात जो नारद ने कही है उसको कैसे हरियाशव प्रचेता के पुत्र और दक्ष के पुत्र पौत्र प्रचेता के समझे है। वो तीसरी बात ये है कि इस दुनिया में एक ऐसा बिल है, सोराख है, होल है, जिसमें गिरने के बाद कोई निकलता नहीं। तो आइए ये श्लोक पढ़ते हैं, ये 13वां श्लोक है। पुमान है वैति यद गत्वा बिल स्वर्गम गतो यथा प्रत्यग धाम विदा इह किम असत्कर्म निर्भवे। पुमान नैव एति यद गत्वा बिल स्वर्गम गतो यथा प्रत्यग धाम विद इह किम असत्कर्म निर्भवे। पुमान नैव एति यद गत्वा बिल स्वर्गम गतो यथा प्रत्यग धाम विद इह किम असत्कर्म निर्भवे। सो छठे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक राजा गोविंद मंदिर में आप लोगों का पाठ कीजिए। नैवेति दत्त्वा विलस्वर्गं गतो यथा सदृति गलस्वर्गम गतो यथा त्यक्त्वा मविदय किम असत्करम भवे। माताजी कुमानैव इति यद् गत्वा स्वर्गम गतो यथा धाम विदय किमसत करम वेर भवे। सो माता जी कोई कुमान नैवेति यद गत्वा, कुमान कहते हैं कोई भी व्यक्ति मानव, कोई भी मानव इंसान न एवे यद गत्वा, वहां जाने के बाद वापस नहीं आता। अब दो उदाहरण है कहां जाने के बाद वापस नहीं आता। तो पहला है बिल स्वर्गम गतो यथा, जैसे बिल स्वर्ग में जाता है। अब ये बिल स्वर्ग पांचवें स्कंद भागवत में बिल स्वर्गों का वर्णन है। हमको एक स्वर्ग लोक का पता है जहां इंद्र और देवता रहते हैं। भागवत में तीन स्वर्गों का वर्णन है, एक स्वर्ग लोक जहां देवता रहते हैं, एक भौम स्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है, और जम्बू द्वीप के आठ वर्ष भौम स्वर्ग कहलाते हैं भारत को छोड़ के, और तीसरा पृथ्वी के नीचे जो सूतल तलातल पाताल ये लोग हैं इनको बिल स्वर्ग कहते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बिल स्वर्ग लिखा है पाताल आदि लोग उनको स्वर्ग क्यों कहते हैं, उधर बहुत सुविधाएं हैं, किसी का भय नहीं है, केवल सुदर्शन चक्र का भय है और कोई भय नहीं, और वहां लोगों के पास बहुत भोग है। तो कोई बिल स्वर्ग में जाता है तो वापस नहीं आता। वैसे ये कौन सी यूनियां नीचे रहती हैं, असुरी यूनियां रहती हैं, नीचे के लोगों में असुरी यूनियां रहती हैं, नाग है, यक्ष है, किन्नर है, दैत्य है। ये बलि महाराज दैत्य का लोग है, सुतल लोग, तो सारे दैत्य वहां रहते हैं, दिति के पुत्र। तो असुरों के पास बहुत बड़ा वैभव है, बहुत बड़ा उनका लोक स्वर्ग से भी ज्यादा सुविधा वाला है। वहां जाने के बाद बहुत मुश्किल से कोई वापस आता है। ये भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं आसुरी योनि, जिसको मैं आसुरी योनि में डालता हूं फिर वो वापस नहीं आता है, उधर ही भटकता रहता है। तो ये उसका उदाहरण है कि जैसे कोई बिल स्वर्ग में नीचे के असुरी योनियों में जाता है वापस नहीं आता है, ऐसे ही, अब दूसरा उदाहरण है, ऐसे ही प्रत्यज्ञ धाम, प्रत्यज्ञ धाम का अर्थ होता है भगवान का धाम, जो प्रत्यक्ष भगवान का धाम है, वैकुंठ है, गोलोक है, वहां जो जाता है, नहीं उसके बारे में अविद्य ई है, इस दुनिया के लोगों को उसका पता नहीं है। अविद्य मतलब पता नहीं, पाताल में नीचे के लोगों में असुर लोग जाते हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि वहां का बड़ा राज है उनके पास, और वहां तो वहां से वापस आने की इच्छा नहीं करती है, वही रहती है वो लोग। ऐसे जैसे उन लोगों का वर्णन है ऐसे भगवान के धाम का वर्णन है, लेकिन इस दुनिया के अज्ञानी लोग नहीं जाते हैं, जानते हैं। अविद का मतलब जिसको जानकारी नहीं है, उन्हें जानते हैं। और फिर ये शब्द सब श्लोकों में आ रहा है। कल वाले श्लोक में था किम असत कर्म भीर भवेत, उससे आगे वाले श्लोक में भी था किम असत कर्म भीर भवेत। किम का मतलब क्या, असत का मतलब जो सदा न रहने वाले, कर्म भीर ऐसे कर्म जिनका फल सदा रहने वाला नहीं है, वो कर्म करके क्या करे। ऐसे तुच्छ फल की इच्छा वाले कर्मों का क्या लाभ, जो बार बार दुनिया में आने जाने के चक्कर में डालते हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है असल में, कि हमारे को भगवान के परम धाम जाना चाहिए, जहां जाने के बाद कभी किसी को लौटना नहीं पड़ता। अन्य स्थानों में तो दुख वाला ऐसा स्थान है, पाताल लोग वहां जाने वाले लौटते नहीं है, वो दुखदाई है। तो भगवान के धाम जाना चाहिए, जहां भगवान के धाम का वर्णन है, श्री प्रभुपाद ने उसका उल्लेख किया है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवत धाम का वर्णन है। कौन सा श्लोक है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो वो परम धाम है मेरा, जहां एक बार आता है कोई वापस नहीं आता है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। इतना सारा भगवान अपने धाम का एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका सैंपल दिखा रहे हैं, ट्रेलर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। इस दुनिया में लोगों को ये पता जब लगा कि अमेरिका में रहने का स्तर बहुत ऊंचा है, तो लोग यहाँ से अमेरिका भागना चाहते हैं। प्रभुपाद ने वहां लिखा है, जब पता लगता है कि वहां लोग ज्यादा सुखी हैं, तो लोग वहां जाते हैं। तो फिर ये लोग जहां दुख है ही नहीं वैकुंठ, जहां भगवान के धाम में सदा सुख है, वहां क्यों नहीं जाना चाहते। उसका कारण है उनको इसकी जानकारी नहीं है, अविद्य इस दुनिया में उसकी जानकारी नहीं है। इस दुनिया में कितनी जानकारी है, स्वर्ग तक की जानकारी है प्राय। आपने देखा होगा किसी का मृत्यु होता है तो चिट्ठी में क्या लिखते हैं, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, अब दादाजी स्वर्ग चले गए, और उसके नीचे क्या लिखते हैं, बड़े दुख का समाचार है कि बाबा जी स्वर्ग चले गए। अरे भाई स्वर्ग चले गए, दुख का समाचार क्या है, क्यों बाबा जी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं थे क्या। लोग लिखते क्या है कि दादाजी स्वर्ग में चले गए, बड़ी दुख की बात, चिट्ठी तो ऐसे लिखते हैं ना, ये दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास दुख की बात तो नहीं है ना, लेकिन सही लिखते हैं कि वहां गया है तो भी वापस आना पड़ेगा, दुख की बात। लेकिन पहले लिखते थे आपको प्रसन्नता होगी कि महात्मा वापस वैकुंठ धाम चले गए, वैकुंठ का विमान आया और महात्मा वैकुंठ धाम चले गए। ध्रुव महाराज के लिए नहीं लिखा है कि वो स्वर्गवास चले गए, लिखा है वैकुंठ से विमान आया, जय विजय चलाने के लाए, नंद सुनंद चला के लाए, और उसके ऊपर बैठा ध्रुव महाराज मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के, और वैकुंठ रवाना हो गया। और उसके आगे उसकी माता का विमान भी जा रहा। तो ये भी वर्णन है कि कुछ वैकुंठ जा रहे हैं विमान में, कुछ स्वर्ग जा रहे हैं, और कुछ पाताल लोक में जा रहे हैं, बिल्व स्वर्ग में जा रहे हैं। तो हमको कहाँ जाना चाहिए, ये तो हमारे को सोचना चाहिए ना, हमें कहाँ जाना चाहिए। भाई जहाँ सुविधा अच्छी है वहाँ जाना चाहिए ना, जहाँ जाने के बाद फिर बोरी बिस्तर बंद नहीं करना पड़े, उठाना नहीं पड़े, स्थाई एक जगह रहना पड़े, ऐसे जगह पे जाना चाहिए ना। तो ये श्लोक नारद जी का सूत्र श्लोक है कि इस संसार में भटकने से अच्छा है कि भगवत धाम चला जाए। अब आइए इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। नारद मुनि ने कहा था कि एक बिल या छेद है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। हरियाश्व इस रूपक का अर्थ समझ गए। एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निमंतर लोक में प्रवेश करता है वो मुश्किल से लौटता देखा जाता है। जो नीचे गए वो अपने नीचे के लोगों में ही खुश रहते। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम प्रत्येक धाम में प्रवेश करता है तो इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। ऐसे ही कोई नीचे जाए कोई ऊपर जाए, जहां जाकर मनुष्य इस दुखमय भौतिक जीवन में नहीं लौटता तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों की तरह, प्रभुपाद ने कहा बंदरों की तरह उछलने कूदने एवं इस स्थान को न देखने या समझने से क्या लाभ, इससे क्या लाभ होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? बंदर की तरह उछलने कूदने से, बंदर क्या करता है, एक डाली से कूदता है दूसरी डाली पे, देखा दूसरी से कूदता फिर एक पे आता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऐसे हम कभी स्वर्ग जाए कभी धरती पे आए कभी नीचे जाए, ऐसे घूमते रहे, इसका लाभ क्या भाई? बंदर के कूदने को कोई अच्छा मानता है क्या? एक दूसरा उदाहरण दिया है अन्य स्थान पे केतन चरितमृत में। पहले बहुत प्रयास करके ऊपर स्वर्ग में जाए फिर वापस नीचे इस धन्य धरती के ऊपर आए। तो एक बार हम ये सत्संग कलकत्ता में कर रहे थे और ये कलकत्ता में सत्संग एक तो बच्चों के पार्क में था, चिल्ड्रन पार्क में था। तो चिल्ड्रन पार्क में फिसलनी लगी होती है, बड़ी मेहनत करके लड़के ऊपर चढ़ जाते हैं फिर ऊपर से बैठ के फिसल के नीचे आते हैं, उसमें उनको मजा आता है। तो हमने पूछा कि ये क्या है? बोला ये बच्चों का खेल है, ऊपर जाते हैं नीचे उतरा। मैंने बोला आप जाके करो। बोला हमारा थोड़ी है, बच्चों का है, हम तो बड़े हो गए हैं अभी ये काम हमसे नहीं करना। तो हमने बोला ये जो सारा मेहनत करके स्वर्ग में जाके फिर वापस फिसल के नीचे आ रहे हैं ये भी बच्चों का खेल है, समझदार को नहीं करना चाहिए भाई। समझदार का काम तो नहीं है ना ये करना। आप लोग जाके भाई फिसलनी में फिसलते हैं क्या? नहीं। तो ये जो ना समझ थोड़ी देर का, जिनको दुनिया में कुछ करने का पता नहीं है वो इसमें सुख लेते हैं। तो जो भगवान के धाम के बारे में नहीं जानते हैं, भगवान के महिमा नहीं जानते हैं, वो इस दुनिया में कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, ऐसे बंदर की तरह कूद पड़े। प्रभुपाद ने अच्छा सा शब्द इस्तेमाल किया है, उपयोग में लाए हैं, एक डाली से दूसरी डाली पे बंदर की तरह कूदने से क्या लाभ? बंदर ऊपर क्यों कूदता है? कोई फल खाने के लिए। फिर नीचे क्यों आता है? कुछ नीचे से उठा भी जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उछल कूद कर रहा है। तो संसार में लोग सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहला शब्द है जैसा कि भगवत गीता के 15:6 में कहा गया, आपने अभी श्लोक पूरा पढ़ा, भगवत धाम जाने वाला वापस लौट के नहीं आता है। और जहां कैसे जाया जाए, प्रभुपाद का लिखने का शैली ऐसी है जब 15 अध्याय में भगवान ने कहा मेरे धाम आओ वापस नहीं आना पड़ेगा तो वहां जाए कैसे? तो फिर दूसरा श्लोक 4 अध्याय का 9 बोल दिया, वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये है हमको क्या करना चाहिए। अगर हम बंदर की तरह उछल कूद से बचना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? और प्रभुपाद ने ये श्लोक कौन सा भगवत गीता से बोला? बोलिए आप सब लोग, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मां नैति मामेति स्वार्जुन। तो अगर हमारे को बंदर नहीं बनना है तो क्या करना चाहिए? भगवान के दिव्य अवतार गुण लीला धाम की कथा सुननी चाहिए। अब भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का 4 दिन में ये महाउत्सव आ रहा है। अब बैठ के हम भगवान राम की करुणा की कथा सुने, उनके अवतार और लीलाओं की कथा सुने, तो ये हमको बंदर बनने से बचा लेगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि कितने मानव हैं और कितने बंदर हैं दुनिया में, कितने लोग कथा सुनते हैं और कितने उछल कूद करते हैं, आपका क्या राय है? ज्यादा कथा सुनने वाले हैं कि ज्यादा उछल कूद वाले? उछल कूद वाले ज्यादा है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी कभी कहा करते थे कि आधुनिक सभ्यता थोड़ा सा पॉलिश किया हुआ पशु है, पॉलिश किया हुआ पशु है, ए सोफिस्टिकेटेड एडिशन ऑफ ए एनिमल। बोला क्यों ऐसे कहते हैं? बोला आदमी 4 पांव पे भागता है और ये 4 पहिए पे भाग रहे हैं, ये गाड़ी में चढ़ के घूम रहे हैं, बस इतना ही। अभी भी हरि कथा नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं, दुनिया में ज्यादा लोग गृहस्थी हैं के साधु संत वैरागी हैं? ग्रस्ती है 95% से ज्यादा तो यही होते, और उनके लिए भागवत में भगवान की कथा सुन, वासुदेव अवतार कथा सुनने का नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को नियम बताया। ग्रस्तों के लिए हरि कथा से ज्यादा और कोई सौभाग्य की बात नहीं है, और दुर्भाग्य है तो कोई कथा सुनने आता ही नहीं। ये भाव चेतना महाप्रभु ने कहा कि भगवान कितने दयाल हुए, अपने कितने नाम रखे, और सब नाम में पूरी शक्तियां भर दी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नाम लेने के लिए रुचि नहीं है। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापि नैमित स्मरणे न काल, एतादृशी कृपा तो भगवान मम अपि दुर्दैव अमिद्रशम मिहा जनिना अनुराग। अनुराग नहीं हो रहा है भगवान के नाम जपने में, हरि कथा में कोई हमारे को रुचि नहीं हो रही है, क्यों? अब ये प्रश्न पहले स्कंद भागवत का है कि भागवत सुनने में रुचि कैसे हो, हरि कथा सुनने में रुचि कैसे हो। मानव को भगवान की कथा सुनने में, हरि कथा भागवत सुनने में कैसे रुचि होगी, आपका क्या राय है? भागवत में क्या साधन लिखा है? शुश्रुषु शतधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् निवसेवनात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ सेवया। पुण्य तीर्थ का मतलब भगवान के भक्त, पुण्य तीर्थ कहते हैं भगवान के भक्तों को। तीर्थ तो चल के सब जगह नहीं आता है, जो तीर्थ में जाता है उसको पवित्र करता है, लेकिन भगवान के भक्त चलते फिरते तीर्थ है, जहां जाते हैं जो उनके संपर्क में आता है, जो उनका दर्शन मात्र करता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो भगवान की कथा की मैं रुचि होगी भक्तों के ही सेवा करने से। अब दूसरा प्रश्न है, भक्तों की सेवा कैसे करें? क्या भक्तों का पांव दबाना सेवा है, या रोटी खिलाना सेवा है, या कपड़ा देना सेवा है? हाँ, सेवा है वो, लेकिन भक्त की सेवा है भगवान की कथा सुनना। भक्त की सेवा है भगवान की कथा सुनना और भगवान के नाम का जप करना। भक्त को प्रसन्न कैसे करोगे? जब कोई भगवान की कथा सुनेगा और भगवान का नाम लेगा तो भक्त प्रसन्न होगा, और भक्त प्रसन्न हो जाएगा तो भागवत में रुचि हो जाएगी सुनने में। क्यों? क्योंकि कथा सुनाएगा, सुनाएगा तो अच्छी लगेगी, तो दोबारा आएगा। एक और स्थान पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, जो जप अच्छी तरह से करता है और जिसका हृदय शुद्ध हो गया है वो भगवत गीता भागवत और चेतना चरितमृत में रुचि लेके पढ़ता है। इसका मतलब हमारे जप करने का फल है भगवान की गुण रूप लीलाओं में आसक्ति होना। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब जप अभी अपना असर नहीं दिखा रहा है, प्रभाव नहीं दिखा रहा है। ये कसौटी है। अगर कथा में रुचि होती है, कथा पढ़ने की सुनने की, तो समझ लो कि आपका जप प्रभाव दिखा रहा है, सेवा प्रभाव दिखा रही है। रात हम जिस गाड़ी में जा रहे थे कल शाम को रथ यात्रा में प्रभुपाद जी, तो एक पुराना हम वो लगा हुआ था गाड़ी में, हम अपनी एक पुरानी प्रवचन को सुन रहे थे। उसमें प्रहलाद महाराज भक्तों की श्रेणी में बहुत नीचे आते हैं व्रज भागवत में। हालांकि प्रहलाद बड़े भक्त हैं, लेकिन उद्धव पांडव नारद और हनुमान इन सबसे नीचे आते हैं श्रेणी में। जो भक्तों की श्रेणी है एक दूसरे से ऊपर, उसमें प्रहलाद और भी बहुत नीचे, और ध्रुव तो है ही बाहर, भक्तों की जो बाहर लाइन के ही बाहर है। और ये महान भक्त है हमारे पास, तो हम वो सुन रहे थे, हमको अपने आप को उसको सुनने का अनुभव कर रहे थे। उसमें लिखा है कि प्रहलाद हमारे सुमरण के आचार्य हैं। सुमरण तो अच्छा करते हैं, लेकिन सुमरण के बाद सेवा होनी चाहिए ना, तो सेवा तो नहीं हो रही। इसलिए प्रहलाद जी स्वयं कहते हैं मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो सुमरण करना, जप करना अच्छा है सेवा के लिए। अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो जप करने का लाभ क्या हुआ? फिर उसी वक्त उदाहरण मैंने दिया, वो मेरे को अभी दोबारा अच्छा लगा। कोई पत्नी कहे अपने पति को, मैं आपसे आपका सारा दिन सुमरण करती हूं, आपकी याद के बगैर मेरा दिन गुजरता नहीं है। और पति का भूख लगी है, रोटी बनाओ, बोला रोटी का टाइम नहीं है, सुमरण कर रही हूँ आपका। हाँ, मेरे को टाइम नहीं है, मैं सुमरण कर रही हूँ, आपका सुमरण कर रही हूँ, आप काय कर। तो भला कोई सेवा हुई क्या? तो इससे संतुष्टि होगी क्या? तो जप करें और उसमें सेवा न करें। और सेवा क्या है? भगवान की कथा सुनना, ये बड़ी सेवा है। तो सुमरण के बाद सेवा जरूरी, जप करना है सेवा में लगने के लिए, और सेवा करने से कथा में रुचि होगी, और कथा में रुचि होने से भगवान धाम जाने का रास्ता खुल जाएगा। ये सीधा रास्ता है। तो अब कहां से कथा शुरू होगी? भक्तों के संग से। भक्तों के संग में क्या चाहिए? भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, उससे होगा हृदय शुद्ध, तब भगवान की कथा में रुचि होगी। तो श्री प्रभुपाद ने पहले कहा जाना चाहिए परम धाम, फिर कहा जाने का रास्ता है भगवान के गुण रूप कर लीला अवतार की कथा सुननी चाहिए। ये हो गई दो बातें। अब आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहां यही कहा गया है श्लोक में, कुमान नैवेति यद गत्वा, वो इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता कौन जो हरि कथा सुनता है, अपितु ज्ञान का शाश्वत आनंदमय जीवन बताने के लिए बिताने के लिए पेचा है कि भगवान के नाम जाना चाहिए। नहीं, अभी तो वापस यहां आके कुछ और काम करना है। ये दुनिया ऐसी लुभावनी मोहिनी है कि कभी ये इच्छा पूरी होने ही नहीं देती है, और से और इच्छा बनाती रहती है। इच्छा कभी किसी की पूरी हुई नहीं, और ये खत्म होने वाली नहीं है कि सारी दुनिया मिल जाए सबको, पूरी दुनिया मिल जाए, यहाँ का सब भोग मिल जाए, तब भी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये बनी है इसलिए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक जगत में कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में और कभी कुत्ते या बिल्ली के रूप में पुनः जन्म लेने से क्या लाभ मिलेगा? इस तरह से समय व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ? कृष्ण ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है। अब प्रभुपाद ने यहाँ तीन बातें कह दी कि अगर ऊपर नीचे जाना बंदर की तरह क्या है, कभी देवता बन जाओगे, कभी मानव बनोगे और कभी नीचे की डाली पे गए तो पशु बन जाएंगे। ऐसे ऊर्ध्व मूल जहाँ श्लोक है 15वें अध्याय का, उसमें डालियां ऊपर नीचे की का मतलब है ऊपर की स्वर्ग लोग और बीच की डालियां मानव लोग, नीचे की डालियां पशु पक्षी के लोग। तो वो डालियां भी इस भौतिक जगत का 14 भुवन है। तो इससे कोई लाभ है क्या? परसों एक बात क्या कही थी खास, 2 लाइन में बड़ा अच्छा था, ये मानव शरीर काय के लिए है, तप के लिए है, भोग के लिए नहीं। मानव शरीर तपस्या के लिए है, भोग के लिए नहीं है। भोग में रोग लगेगा और तपस्या में योग लगेगा। तपस्या से अनंत ब्रह्म सुख मिलेगा, भोग से तुच्छ इंद्रियों का सुख मिलेगा। एक शुद्ध तुच्छ क्षणिक ट्रेवियल सेंस एंजॉयमेंट है और एक अनलिमिटेड ब्रह्म सुख है। तो हमें क्या चाहिए? एक जगह जाने के बाद वापस ऊंच नीच जूनियों में आना पड़ता है और एक जगह जाने के बाद सदा आनंद में रहना पड़ता है, कहां जाना चाहिए? अब ये समझ में नहीं आता हमको, इसका कारण क्या है? लोग कहते जाके कौन वापस आया है जो हम जाए। ये वो लोग बात कर रहे हैं, नारद कह रहा है जो वहां जाके आया है, और उसकी हम कई कथाएं बताते हैं कि नारद वैकुंठ गया भगवान से मिलके, फिर आया संसारियों से बात करने के लिए। ये बात वो कर रहा है जो जाके आया है। लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना, कौन जाके आया? बोला नारद जाके आया, वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे, नारद कह रहा है, वो जाता है। भाई जो जाके आया वही कह रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे। नारद जाता है कि नहीं जाता है भगवत धाम? जिसके रास्ता कोई नहीं रोके वो नारद चला जाएगा, कोई रोकता नहीं उसको, कहीं भी जा सकता है। तो ये कभी बैठ के अकेले में सोचना चाहिए कि हमें वापस यहां आना ठीक है या भगवत धाम जाना ठीक है। ये जब तक हम निर्णय नहीं जब तक कर पाएंगे, तब तक इस दुनिया की भूल भलाइयों से निकल नहीं पाएंगे। अभी हमारी इस दुनिया में बहुत बड़ी योजनाएं बनी हुई है, भगवत धाम जाने की इच्छा 1% भी नहीं है। सामान्य लोगों को तो है ही नहीं, भक्तों को भी 10% भक्तों को भी भगवत धाम जाने की इच्छा अभी तक जागृत नहीं हुई है। कैसे लग रहा है आपको? भगवत धाम जाने की इच्छा वहां जागृत करनी चाहिए। ये यही वजह कहा जा रहा है। क्या कहा गया भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाय अशाश्वतम। माम उपेत्य, अगर मेरे पास नहीं आए, मेरे पास पहुंच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचे तो पुनर्जन्म वापस दुनिया में आना पड़ेगा। कैसी है दुनिया? दुखालयम, यहां तो दुखी पाए, दुखी भोगना पड़ेगा। बोला कब तक भोग रहा? अशाश्वतम, ये सदा रहने वाली है नहीं। आप समझो कि यहां सदा सुखी रह जाएंगे, ये संभव नहीं है। इस दुनिया सदा रह ही नहीं जाएगी, रहेगी नहीं तो आप क्या कर, सदा कैसे रहोगे यहां? और फिर ना अपनोवती महात्मन संसिद्धिम परम गता। लेकिन जो महात्मा है, जो परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, वो वापस नहीं आते। ऐसे महात्मा कौन है? तब भगवद गीता के 9वें अध्याय का ये श्लोक ध्यान में आना चाहिए, किम पुनर्ब्रह्मणा भक्त्या राज ऋष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम प्राप्त भजस्व माम। ये श्लोक यहां ऐसा बैठेगा कि जो ब्राह्मण है, जो भक्त है, जो राज ऋषि हैं, जो जानते हैं कि ये दुखों का संसार है, जो जानते हैं कि यह सदा रहने वाला नहीं है, वो मेरा भजन करते। ये तीन प्रकार के लोग उस श्रेणी में आते हैं जो महात्मा है, वो मेरा भजन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार शाश्वत नहीं है, ये सुख की जगह नहीं है, इसलिए मेरा भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? मनमना भव मद भक्तो मदियाद इमाम नमस्कृ। वो मेरा भजन कैसे करते हैं? मेरे को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करेंगे तो भगवान के मंदिर में आएंगे तब ना। मदियादी मेरी पूजा करेंगे जब भगवान के पास आएंगे तब ना। भगवान में मन लगाएंगे जब भगवान के बारे में सुनेंगे तब ना। मद भक्ता मेरा भक्त बनेंगे जब भगवान की सेवा में लगेंगे तब ना। तो ये सब भगवान की सेवा में लगना ये कौन करते हैं? महात्मा करते हैं। जो बुद्धिमान है वो ऐसा करते हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं आ लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मनुष्य को असली चिंता अपने को जन्म मृत्यु के क्या लिखा है, पिष्ट पेशण से। पिष्ट पेशण क्या है? देखो क्या लिखा है हिंदी में। पिष्ट पेशण का मतलब होना चाहिए चबे को चबाना, मेरे ख्याल में हिंदी में ऐसी लिखा, अंग्रेजी में देखें तो पता लगे। पिष्ट पेशण है क्या है? हिंदी में नहीं चाहिए। कुछ समझ में आ रहा? लिखिए ना, क्या है, क्या शब्द है हिंदी का ये? हाँ, पिष्ट पेशण का मतलब क्या? वो तो मैं ये ऐसे समझ रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा। मनुष्य को इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना चाहिए, तो क्यों आता है? क्यों आता है तो प्रभुपाद लिखे पिस्टिपेशन रिपीटेशन। अब उसको सीधा लिखते आवागमन लिख देता, आना जाना। अब रिपीट इतना लंबा पिस्टिपेशन लिखा है। पिस्टिपेशन आना जाना, नया शब्द सीख लो आज। मंदिर में पिस्टिपेशन किया करो, आया जाया करो। वो प्रसाद हाल में पिस्टिपेशन करना भाई, आना जाना। सो अब प्रश्न ये उठता है कि आवागमन में बचने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं आता क्यों है? अभी तक तो पता लग गया कि हम दुनिया में नहीं आना है तो भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान का नाम जपने को मिलेगा, और इससे भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाएगा। अब यहां नहीं जाते हैं क्या कारण है? किम असत कर्म भी, किम असत कर्म भी। वापस क्यों लौट के आते हैं? पृष्ठ पेशण क्यों होता है? बोला वो फलदायक कर्मों में बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। फल सब इधर आके कहते हैं क्या, भगवान हमारा मनोरथ पूरा करो, यही कहते हैं ना। मनोरथ पूरा करो इसका मतलब जो हम चाहते हैं वो भगवान फल दो। भगवान कहते हैं तुम तो चाहते हो कि तुम्हारा सुख सदा बना रहे, ये शरीर तो सदा बना रहेगा नहीं, तो तेरा सुख अगले जन्म में मिलेगा, इसका मतलब आप इच्छा करोगे कोई फल को तो उसको भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा ना। फल के इच्छाओं के कर्म दूसरे जन्म में बंधन में डालने वाले हैं। भाई इच्छा करेंगे तो उसको भोगने के लिए शरीर चाहिए ना। एक जन्म में सब इच्छा पूरी नहीं होती है तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो दूसरे जन्म का काम हरे कृष्णा फिनिश।